नमस्कार भारत, तारीख 18 मार्च, दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी राज। नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर।
वो घर में थे, उनकी इच्छा थी कि वो घर में रहेंगे, ऑक्सीजन को सब दिया था, शाम तक वो चुस्ते रहे।
पर्रिकर के बाद अब गोवा में गहराया राजनीतिक संकट।
अंतिम संस्कार होने से पहले दूसरी मुख्यमंत्री की शपथ विधि होनी चाहिए, यदि वो नहीं होती तो सरकार गिर जाती है, तो प्रेसिडेंट्स रूल आ सकता है और बाद में असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है।
सुनवाएंगे वसतुल्ला खान की डायरी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर पे दोनों देश एक दूसरे को दूध तो जरूर पेश कर रहे हैं मगर मेंगनिया डाल के, और नुकसान किसका है? सिर्फ सिख समुदाय का।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार शाम को निधन हो गया। वो 63 साल के थे। पर्रिकर पिछले एक साल से अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। उनका अमेरिका के साथ साथ दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज शाम 5 बजे गोवा की राजधानी पणजी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके सम्मान में केंद्र सरकार ने आज शोक दिवस का ऐलान भी किया है। न्यूजीलैंड की कैबिनेट आज देश के बंदूक रखने संबंधी कानूनों की समीक्षा करेगी। कैबिनेट की ये बैठक शुक्रवार को क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हुए हमले के बाद हो रही है। इन हमलों में 50 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट हमलावर द्वारा इस्तेमाल किए गए सेमी ऑटोमेटिक जैसे हथियारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने न्यू साउथ वेल्स में 2 घरों पर छापे डाले हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ब्रेंटन टैरेंट यहीं पला बढ़ा था। उसे 5 अप्रैल को अदालत में भी पेश किया जाएगा। अमरीकी सीनेटर क्रिस्टीन जिलिब्रांड ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। न्यूयॉर्क की रहने वाली क्रिस्टीन ने एक ऑनलाइन वीडियो में अमरीकी राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया।
Oh say does that star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave?
उन्होंने कहा कि उनके लिए ये चुनाव अमरीका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उसूलों के खिलाफ युद्ध जैसा होगा। क्रिस्टीन अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की सबसे हालिया उम्मीदवार हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च हमले में अपनी पत्नी हुस्ने आरा को खोने वाले फरीदुद्दीन ने बीबीसी से कहा है कि उन्होंने हत्यारे को माफ कर दिया है।
I lost my wife, but I don't hate the killer. As a person, I love him.
मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन मैं हत्यारे से नफरत नहीं करता, पर मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि उसने जो कुछ किया मैं उसका समर्थन भी नहीं कर सकता। हालांकि मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी वो दरिया दिल ज़रूर रहा होगा। ये बात और है कि वो अपनी दरिया दिली को सकारात्मक रूप में नहीं ढाल सका। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है और मैं ईश्वर से उसे सही रास्ता दिखाने की दुआ कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो लोगों की जान लेगा नहीं बल्कि उनकी जान बचाएगा। क्राइस्टचर्च हमले में मारी गई एक महिला के पति के शब्द। बांग्लादेश मूल की 42 वर्षीय हुस्ने आरा को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अल नूरी मस्जिद में अपने पति को बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जिम्बाब्वे में चक्रवाती तूफान इटाई के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। तूफान की वजह से घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से राहत और बचाव की कोशिशों में भी परेशानी हो रही है। बीबीसी में जिम्बाब्वे के एक संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय लोगों ने तूफान पीड़ितों के लिए खाना, कंबल और पैसे दान दिए हैं। जिम्बाब्वे के लोग प्रशासन पर प्राकृतिक आपदा से सही ढंग से न निबट पाने के आरोप लगा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अपनी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। वो मंगलवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी بی بی سی ہندی سے دن کی پہلی سبھا نمسکار بھارت سن رہے سبھی شروتاؤں کو مانسی داش کا نمسکار۔ یہ کارکرم آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ گوا کے مکھیہ منتری اور دیش کے رکشا منتری رہے منوہر پریکر کا کل دیر شام رات قریب 8 بجے دیہانت ہو گیا۔ 63 سال کے پریکر بیتے کچھ وقت سے اگناشے کے کینسر سے جوجھ رہے تھے۔ ان کا علاج امریکہ کے ساتھ ساتھ نئی دلی کے ایمز اور ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں چل رہا تھا۔ شکروار کو اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس کے بعد گوا میں اپنے گھر پر ہی ان کا علاج چل رہا تھا، یہیں انہوں نے انتم سانس لی۔ مانا جاتا ہے کہ گوا کے مکھیہ منتری کے روپ میں کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہی پارٹی بی جے پی میں جتنی کٹرپنتھی آوازیں تھیں انہیں گوا کی سیماؤں سے پرے رکھا۔ ان کی خود کی چھوی دھر دکشن پنتھی کی بجائے مدھیہ مارگی راجنیتا کی رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ پریسر اکثر کہا کرتے تھے، یہ گوا بی جے پی ہے، یہاں چیزیں الگ طرح سے ہوتی ہیں۔ منوہر پریکر کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر سنیے بی بی سی سنواددا بھومیکا رائے کی رپورٹ۔
127 crores people of this country and Indian Armed Forces deserves the credit of surgical strike. My and your contribution is 1/127 crores in this surgical strike.
سال 2016 میں ہوئی پہلی سرجیکل اسٹرائک کی کامیابی کا شرے جوانوں اور دیش واسیوں کو دیتی ہوئی یہ بلند اور جوش سے لبریز آواز جو آپ سن رہے ہیں، وہ کل شام ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ گوا کے مکھیہ منتری اور پورو رکشا منتری رہے منوہر پریکر نے رویوار کو آخری سانس لی۔ پریکر کی طبیعت اچانک شکروار کو بگڑ گئی۔ پریکر کے نجی سچیو روپیش کامت نے بتایا کہ انہیں اسپتال میں بھرتی نہیں کرایا گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھے جب انہوں نے انتم سانس لی۔
ہاں، ایک تھوڑی نازک تھی، دوپہر سے تھوڑا وہ گھر میں ہی تھے، ان کی اچھا تھی کہ وہ گھر میں ہی رہیں گے۔ آکسیجن وہ سب دیا تھا، آل میڈیکل تھنگ واز، تو شام تک وہ چستے رہے۔
دلی سے بہت سے راجنیتاؤں کے آج گوا پہنچنے کی امید ہے، انتم سنسکار آج پنجی میں ہوگا۔ روپیش اس بابت کہتے ہیں،
صبح 11 سے شام 4 بجے تک یہاں کلاگتے بھی ان کی انتم درشن کے لیے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا، اور 4:30 بجے کے بعد ان کی ودھی شروع ہو جائے گی پنجی میں ہی۔
13 دسمبر 1955 میں گوا میں جنمے پریکر ایسے پہلے آئی آئی ٹی پاس انجینئر تھے جو مکھیہ منتری بنے۔ بی جے پی میں انہیں لانے والے سبھاش ویلنگکر ان کے مارگ درشک بھی تھے اور آر ایس ایس گرو بھی۔ انہوں نے ہی پریکر کو گوا میں بی جے پی کے بھوشیہ کے طور پر استھاپت کیا۔ بی جے پی میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے خود کو سافٹ ہندوتو آئیکن کے طور پر ہی آگے رکھا۔ 4 بار مکھیہ منتری رہے پریکر کو ان کی سادگی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ بی جے پی نیتا شہنواز حسین کہتے ہیں،
وہ دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، وہ سادگی میں جیتے تھے اور متروں کے متر تھے۔ وہ خود سے گاڑی چلا کے چلتے تھے، اسکوٹر پہ چلتے تھے۔
حالانکہ سطح ہر کسی کو کسی نہ کسی روپ میں بدل دیتی ہے، اور پریکر بھی اس سے اچھوتے نہیں رہے۔ راجنیتک پارٹی سے جڑنے کے بعد ان کا مہتو کانکشی روپ سامنے آیا، اور انہوں نے گوا کے راجنیتک گلیاروں میں سیندھ بھی لگائی۔ وہ پارٹی کے نرویواد نیتا بن کر ابھرے۔ وہ بی جے پی کے ان 4 ودھائکوں میں بھی شامل تھے جو سب سے پہلے بی جے پی کے ٹکٹ پر گوا ودھان سبھا کے لیے چنے گئے تھے۔ چھتیس گڑھ کے پورو مکھیہ منتری رمن سنگھ ان کے بارے میں کہتے ہیں،
اتنا سادگی، اتنا صاف گوئی کے ساتھ، اتنا اسپشٹ وچار اور ڈیولپمنٹ کے پرتی جو ان کا ایک نظریہ تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور میں جب بھی ان سے سجھاؤ لیتا، جب بھی ان سے بات کرتا، ہر وشے میں ان کا ایک الگ درشٹیکون ہوتا تھا۔
آر ایس ایس کے راستے اپنے راجنیتک سفر کی شروعات کرنے والے پریکر 4 بار گوا کے مکھیہ منتری رہے، اور یہ وہی پریکر تھے جنہوں نے سال 2014 کے لوک سبھا چناؤں سے پہلے نریندر مودی کو بی جے پی کا سب سے پربل پردھان منتری پد کا دعوے دار بتایا تھا۔ اس کے بعد جب مودی نے ستا سنبھالی تو پریکر کو 3 سشستر سیناؤں کا دائتو سونپتے ہوئے رکشا منتری نیوکت کیا۔ حالانکہ پریکر 3 سال ہی اس پد پر رہے، لیکن دیش کی پہلی سرجیکل اسٹرائک کا شرے انہیں ہی جاتا ہے۔ حالانکہ رفال ڈیل بھی انہیں کے کاری کال میں ہوئی۔ وہ 3 سال رکشا منتری تو رہے، لیکن کہیں نہ کہیں دلی انہیں راس نہیں آیا، اور انہیں جیسے ہی موقع ملا وہ بطور مکھیہ منتری گوا واپس آ گئے۔ ایک خاص بات اور، انک 13 سے پریکر کا گہرا رشتہ تھا۔ ان کے جنم کی تاریخ 13 دسمبر، ان کی گاڑی کے نمبر پلیٹ پر 13، اور یہاں تک کہ جب سال 2000 میں وہ پہلی بار مکھیہ منتری بنے تو بھی ان کے ساتھ 13 ایم ایل اے تھے، और इसे दुर्भाग्य कहिए या एक संयोग, उनके निधन के एक दिन पहले तक उनकी पार्टी में 13 MLA थे और अब उनके जाने के बाद ये संख्या 12 हो गई है। मनोहर पर्रिकर की छवि एक जुझारू कार्यकर्ता, फिर एक नेता और उसके बाद एक मुख्यमंत्री की रही। उनके राजनीतिक सफर को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं,
करीब 35 साल पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और उस समय मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नाइक, संजीव देसाई, दिगंबर कामत, ये चार लोग टीम के रूप में प्रमुख रूप से काम करते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपने जीवन पूरी तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया था और उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
पहली बार जब उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें उनकी नाक में नली लगी हुई थी तो बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई। वो बीमार थे, सेहत हर रोज उन्हें एक नया रंग दिखा रही थी, लेकिन वो काम करते रहे। इसका एक पहलू जहां उनका जुझारूपन हो सकता है तो दूसरा राजनीतिक भी, जो सत्ता बचाए रखने के लिए जरूरी था, क्योंकि गठबंधन का समर्थन किसी पार्टी विशेष को नहीं बल्कि पर्रिकर को था। भूमिका राय, BBC, नई दिल्ली।
मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद अब गोवा पर राजनीतिक संकट के बादल हैं। गोवा में कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही राज्यपाल को खत लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। क्या बीजेपी सरकार बचा पाने में कामयाब रहेगी या फिर पर्रिकर की मौत बीजेपी के लिए एक सियासी चुनौती बन जाएगी? BBC संवाददाता भूमिका राय ने गोवा में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से संपर्क कर उनसे यही पूछा कि मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद अब गोवा में कौन से राजनीतिक बदलाव आ सकते हैं।
अभी तो एक ऐसी बात है कि अंतिम संस्कार होने से पहले दूसरी मुख्यमंत्री की शपथ विधि होनी चाहिए, यदि वो नहीं होती तो सरकार गिर जाती है। तो अभी भाजपा की मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग में तय करेंगे, और नितिन गडकरी भी दिल्ली से बाहर निकले और ये निर्णय नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की सोच रहे हैं अभी। दूसरी बाजू से कांग्रेस जो है उन्होंने कहा है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए उन्हें बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। ये नहीं हुआ और सरकार गिर गई तो प्रेसिडेंट रूल आ सकता है और बाद में असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है।
लेकिन गोवा में बीजेपी जो है उसे 2 अन्य दलों का समर्थन, तो अब क्या वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा?
ये तो बात सच है कि जिन्होंने भी, यानी निर्दलीय और बाकी 2 घटक पक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड, इनके लोगों ने, सब लोगों ने मनोहर पर्रिकर को अपना समर्थन दिया था। और जब मनोहर पर्रिकर की तबीयत बिगड़ गई और ऐसा लग रहा था कि उनका समय आ गया है, तो 6 लोग जो दो निर्दलीय थे और गोवा फॉरवर्ड, उन्होंने तो बताया कि हाँ, अभी तक हमारा जो समर्थन है वो मनोहर पर्रिकर को है, जब और कुछ होगा तब सोचेंगे। तो उन्होंने अभी तक उनका जो कुछ है मन में क्या है वो बताया नहीं है, और ये नहीं हुआ तो फिर सरकार नहीं बनेगी।
लेकिन कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही दावा कर दिया था, इस दावे में कितना वजन आप देखते हैं?
देखो, एक तो है कि ऐसा एक होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर में किया उसकी पुनरावृत्ति गोवा में हो सकती है, ऐसा डर कांग्रेस को लग रहा था, इसलिए कांग्रेस अपनी केस बना रही है कोर्ट में जाने के लिए। सो न्यायालय में जाके वो केस बनाना है, इसलिए वो दावे पेश कर रहे हैं, गवर्नर को पत्र भेजे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 5 पत्र भेजे थे और जब वो केस स्ट्रांग बनने लगी तो भाजपा ने कांग्रेस के 2 विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा में ज्वाइन हो गए, इसलिए भाजपा की और कांग्रेस की संख्या समसमान हुई थी। लेकिन उसके बाद उनके एक फ्रांसिस डिसोजा बोल के एक विधायक थे, वो भी कैंसर से लड़ रहे थे तो उनका देहांत हो गया। उसके बाद अभी कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट है और अभी मनोहर पर्रिकर जाने के बाद कांग्रेस की 14 लोग है और भाजपा के पास सिर्फ 12 लोग है, और बाकी पक्षों ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया और वो कांग्रेस के साथ गए, तो कांग्रेस सरकार बना सकती है।
बीजेपी की तरफ से भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ MLA उनसे जुड़ना चाहते हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है?
अभी रविवार को एक तो बहुत बड़ी रूमर स्प्रेड हो गई थी कि दिगंबर कामत, जो कांग्रेस के पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो इस्तीफा देके भाजपा में जाएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वो दिल्ली में थे भी, लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ रूमर्स है और मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जाएंगे।
पर्रिकर के बाद अब किस करवट बैठेगी गोवा की राजनीति, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई। अब एक नजर डालते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। अधिक जानकारी देने के लिए अखबारों के साथ स्टूडियो में सिंधु वासिनी है हमारे साथ। सिंधु, अखबारों में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर को किस तरह कवर किया गया है?
जी मानसी, आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर मनोहर पर्रिकर के निधन की खबरें और उनकी अलग अलग तस्वीरें ही प्रमुखता से दिख रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, सीएम पर्रिकर लूजेस हिज बैटल विद कैंसर, गोवा इन पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस सियासी संकट की बात हो रही थी। दैनिक जागरण की हेडिंग है, मनोहर यादें छोड़ गए पर्रिकर, कैंसर से निधन। अमर उजाला लिखता है, पहले IIT सीएम पर्रिकर नहीं रहे। इसके अलावा अखबारों ने गोवा के सीएम की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को याद करते हुए कुछ खास कॉलम लिखे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुछ अखबारों ने उनकी सादगी के बारे में लिखा है, तो कुछ ने उनके हाफ बाजू वाली शर्ट और चश्मे की स्टाइल के बारे में। कहीं उनकी सेना के साथ तस्वीरें हैं, तो कहीं नाक में नली लगाए आखिरी दिनों में काम संभालते हुए। और दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर उनकी फुटबॉल खेलती हुई एक जीवन तस्वीर छापी है और लिखा है कि कैंसर था लेकिन रोज़ काम करते थे। अखबार गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर के हवाले से लिखता है कि पर्रिकर अपने निधन के तकरीबन एक घंटे पहले तक कामकाज की बातें ही कर रहे थे। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने उनसे जुड़ा एक और वाकया शेयर किया है। अखबार लिखता है कि पर्रिकर साल 2012 में गोवा के पर्यटन मंत्री मातनही सल्दना की मौत पर फूट फूट कर रोए थे, और जब वो बीमार पड़े तो पर्रिकर लगातार उनके बिस्तर के सिरहाने बैठे रहे, और डॉक्टरों ने जब उनसे कहा कि आप घर चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी को छोड़कर कैसे घर चला जाऊं जो इतने सालों तक मेरे साथ बना रहा।
जी, इसके अलावा अखबारों में कुछ और खबरें भी हैं आज।
जी मानसी, इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि NCERT ने 9वीं कक्षा की इतिहास की किताब से भारत में जातीय भेदभाव से संबंधित 3 चैप्टर हटा दिए हैं, और इन चैप्टरों में से एक केरल की दलित महिलाओं के तथा कथित ऊंची जाति के लोगों से संघर्ष की कहानी बताई गई थी। दरअसल 18वीं सदी के लगभग त्रावणकोर में नादर समुदाय की महिलाएं, नादर जिसे दलित समुदाय माना जाता था, उन्हें अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखने के लिए मजबूर किया जाता था, और तकरीबन 50 साल के संघर्ष के बाद उन्हें अपना शरीर ढकने का हक मिला। इस चैप्टर को हटा दिया गया है, और इस और भी कई बदलाव हैं जिसके तहत किताब के लगभग 70 पन्ने हटा दिए गए हैं।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद सिंधु वासिनी। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई प्रभारी प्रियंका गांधी आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत गांधी परिवार के पैतृक नगर प्रयागराज यानी इलाहाबाद से कर रही हैं। 18 मार्च से 20 मार्च तक वो प्रयागराज से वाराणसी के बीच गंगा नदी में जलमार्ग से यात्रा करेंगी। इस दौरान उनके जनसंपर्क और कई अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। हालांकि जलमार्ग से इस पूरी यात्रा में कई अड़चने भी हैं, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी रविवार रात ही प्रयागराज पहुंच गई हैं। सुनिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात मैच मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत प्रियंका गांधी अपने पैतृक शहर प्रयागराज से कर रही हैं। गंगा नदी में प्रयागराज से वाराणसी तक की यात्रा करने का जो कार्यक्रम है वो एक ओर कई प्रतीकों को समेटे है तो दूसरी ओर राजनीति के मकसद को साधने की कोशिश भी है। इस बात को खुद प्रियंका गांधी ने रविवार को प्रदेशवासियों को संबोधित एक पत्र में किया, तो प्रचार के लिए इस रास्ते को चुनने के पीछे वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये वजह बताई।
गंगा मैया के दोनों किनारों पे भारत की सभ्यता और संस्कृति बसती है, पर यह भी सच कि सबसे गरीब तबका जो है वो भी यहीं बसता है। किसी नेता ने ये नहीं सोचा, लोग सड़क मार्ग से चले जाते हैं बाजारों से होके, पर गंगा मैया के दोनों तटों पर बसने वाले लोगों के दुख दर्द को समझना, उन्हें जोड़ना, उनकी सेवा में तत्पर होना अगर किसी ने सोचा है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने सोचा है।
प्रियंका गांधी की इस 3 दिन की यात्रा में जनसंपर्क भी होगा, रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी होंगे और मजार में मत्था टेकने भी जाएंगी। साथ ही प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी में पार्टी के खोए जनाधार को वापस पाने की राह भी टटोलेंगी। हालांकि उनकी इस यात्रा में कुछ अड़चने आने की भी आशंका है, क्योंकि कुछ जगहों पर स्टीमर न चल पाने और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने भी रविवार को इस बात का जिक्र किया।
जो एक प्रस्तावित था उसके लिए परमिशन मांगी जा रही है, सिक्योरिटी और जल विभाग की NOC ली जा रही है। कुछ जगहों पे परमिशन हो गई है क्लियर, कुछ जगहों पे NOC नहीं मिल रही है, कुछ जगहों के अंदर सिक्योरिटी के लिए अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन ये तय है
जिन जगहों को हमने चिन्हित किया उन जगहों पर जाएंगे।
लेकिन प्रयागराज के लोग न सिर्फ उनके इंतजार में हैं बल्कि उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। एक स्थानीय नेता बोले,
अगर उनको इलाहाबाद से लड़ाया जाएगा इस पूरा मंडल में जो है एक लहर अपने आप आ जाएगी और यहाँ पे इस पूरे मंडल में हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमने उनसे ये भी कहा कि नाम ऊपर भेजिए और यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाइए।
वहीं जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी के प्रचार और ऐसे नए तरीकों से पार्टी को लाभ अवश्य होगा, लेकिन कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन कहती हैं,
देश में जो भी मोदी जी राहुल जी के खिलाफ बोलेंगे या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे उसका जवाब प्रियंका गांधी देंगे, ये बड़ा क्लियर है। एक हाजिर जवाबी, उनका रिस्पांस लेवल बहुत अच्छा रहता है, एक ग्लैमर फैक्टर भी है और गांधी परिवार से भी है। तो बीजेपी को जो कैंपेनिंग में था ना कि उनके पास बहुत सारे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स थे जबकि कांग्रेस के पास उतने लोग नहीं हैं, तो प्रियंका उस कमी को जरूर पूरा करेंगी।
प्रियंका गांधी की इस यात्रा का आखिरी पड़ाव वाराणसी होगा जहाँ वो लोगों से मिलने के अलावा अस्सी घाट पर होने वाले एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत प्रशासित कश्मीर में 18 साल की एक स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO खुशबू जान की बीते शनिवार चरमपंथियों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद खुशबू का परिवार अब किस हाल में है और जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाली दूसरी महिला SPO के लिए कश्मीर में नौकरी करना कितना मुश्किल है, सुनिए रिपोर्ट हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की।
खुशबू जान की माँ हसीना जो रोते बलकते बता रही थी कि मैं इस बात की उम्मीद कर रही थी कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुझे कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ेगी। डरी सहमी हसीना के घर पर कई लोग मौजूद थे जो हसीना को दिलासा दे रहे थे, लेकिन हसीना के लिए मुमकिन नहीं कि वो बेटी के लिए सजाए गए सपनों की यादों से अपने आप को अलग कर दे। खुशबू को दुल्हन बनाने का बड़ा ख्वाब मेरी आंखों में सज रहा था, लेकिन क्या पता था कि सब कुछ छीना जाएगा। जितना भी वो कमाती थी हमें भी उससे मदद पहुंचती। वो बार बार कहती कि मैं आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। ये थे हसीना के शब्द। शनिवार दोपहर को दो संदिग्ध चरमपंथियों ने खुशबू जान को दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियां के वेल गांव में उनके घर पर उन्हें गोली मारी थी। खुशबू जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO के रूप में काम कर रही थी। हसीना कहती है कि उनकी बेटी नौकरी करने के साथ साथ 11वीं क्लास की भी पढ़ाई कर रही थी। खुशबू के पिता मोहम्मद नजीर भट्ट पेशे से एक मजदूर हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो घटनाक्रम को याद करते हैं। दिन के 2:30 बजे थे, दो नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमारे घर के बाहर रुके। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। वो घर में दाखिल हो गए और खुशबू को ढूंढने लगे। मैंने खुशबू को आवाज मारी और वो बाहर आई। उन्होंने खुशबू के हाथ में फोन दिया और किसी से बात करने को कहा। इतने में वो खुशबू को अंदर ले गए। कमरे में ले जाने के साथ ही उन्होंने खुशबू के चेहरे पर गोली चलाई और वो नीचे गिर गईं। गोली चलाने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा था। ये थे नजीर भट्ट के शब्द। भट्ट कहते हैं कि मुझ जैसे गरीब बाप के लिए खुशबू के वो चंद पैसे जो वो कमा के लाती थी हमेशा मददगार साबित हो रहे थे।
अगर
हमें तो बर्बाद करके छोड़ दिया गया। बीते 3 वर्षों में किसी ने भी खुशबू को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह सब अचानक हो गया। अगर मुझसे कोई कहता कि खुशबू नौकरी छोड़ दे तो हमने ऐसा भी किया होता। खुशबू की घटना घटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाली दूसरी SPO कहती है कि कश्मीर जैसी जगह पर SPO के रूप में काम करना कोई आसान काम नहीं है। एक SPO जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया बता रही थी कि इस तरह की घटनाओं के बाद डर और भी बढ़ जाता है। सामान्य हालात में भी हमें डर लगता है। ये मुश्किल भरा काम है। ये थे एक महिला SPO के शब्द। बीते 2 वर्षों में चरमपंथियों ने कई SPO को मार डाला है। कई SPO को 5,000 तनख्वाह मिलती है तो किसी को 12 और किसी को 15,000। बीते वर्षों में किसी महिला SPO को मारने की ये पहली घटना थी। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
ہر سپتاہ ہم آپ کو سنواتے ہیں وسعت اللہ خان کی ڈائری جو پاکستان سے وہ آپ کے لیے بھیجتے ہیں۔ آج ڈائری میں وہ چرچا کر رہے ہیں کرتارپور کوریڈور کی۔ کرتارپور کوریڈور کو لے کر حال میں بھارت اور پاکستان کے ادھیکاریوں کے بیچ بھارتی سیما کے انترگت اٹاری میں ایک اہم بیٹھک ہوئی۔ بالا کوٹ حملے کے بعد دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کی یہ پہلی اوپچارک ملاقات تھی۔ اگلی بیٹھک 2 اپریل کو پاکستانی سیما کے انترگت واگھا میں ہونے والی ہے، لیکن کیا بات آگے بڑھے گی، اسی پر سنیے وسعت اللہ خان کی ڈائری۔
جب 4 دن پہلے بھارت اور پاکستان نے اٹاری میں سیما پار کرتارپور کوریڈور کی تعمیرات کی تفصیلات طے کرنے کے لیے بات چیت کی اور اس کے بعد سوہارت پورن واتاورن کی بات کرتے ہوئے سنیکت گھوشنا پتر جاری کیا، تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ آپسی گرما گرمی اور چھیچا لیدر اپنی جگہ پر چلیے، 4 ورش میں پہلی بار کسی بھی وشے پہ کسی بھی بہانے دونوں مل تو بیٹھے اور جلدی پھر مل بیٹھیں گے۔ مگر اگلے ہی دن اخبار دی ہندو میں یہ پڑھ کے مزہ کرکرا ہو گیا کہ وارتالاپ میں بھاگ لینے والے ایک بھارتی کرمچاری کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے رویے سے خوش نہیں۔ پہلے پاکستان ویزا فری کوریڈور کی بات کر رہا تھا، اب وہ یاتریوں کے لیے کچھ فیس کے ساتھ اسپیشل پرمٹ کی شرط لگا رہا ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ روزانہ 5,000 یاتریوں کو کرتارپور صاحب کے درشن کی اجازت ہونی چاہیے اور پاکستان کہتا ہے کہ 700 یاتری روزانہ ٹھیک ہیں۔ بھارت کہتا ہے کہ یاتریوں کو پیدل آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، 15-15 کے گروپ میں گاڑی میں بٹھال کے لایا لے جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے گردوارے کی وہ 100 ایکڑ زمین بھی کاریڈور کی تعمیر کے بہانے قبضے میں لے لی ہے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دان کی تھی۔ اور یہ کہ اتری امریکہ کی سکھ فار جسٹس نامک سنستھا نے اگلے ورش کرتارپور میں خالصتان ریفرنڈم کے نام سے ایک سمبیلن کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کا سمرتھن حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں دیشوں کی ملاقات کے اندر کی یہ سب باتیں ٹھیک ہوں، مگر پاکستان نے اندر کی کوئی بات بھی اب تک میڈیا کو نہیں بتائی، صرف یہ کہا ہے کہ اگلی ملاقات 2 اپریل کو ہوگی۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو دونوں طرف سے 10 طرح کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ کیا یہ اچت ہے کہ کسی بھی سمجھوتے سے پہلے اندر کی سب باتیں میڈیا کو پتہ چل جائیں؟ ویسے ان میں سے ایسی کون سی بات ہے جو مل بیٹھ کے نہیں سلٹائی جا سکتی اور اس کا چوک میں بیٹھ کے طے کرنا ہی ضروری ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرتارپور کوریڈور پہ دونوں دیش ایک دوسرے کو دودھ تو ضرور پیش کر رہے ہیں مگر مینگنیاں ڈال کے، اور نقصان کس کا ہے؟ صرف سکھ سمودائے کا۔ آپ نے بچپن میں لومڑی اور سارس کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی جن کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ ایک دن شیر نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، آپ دوستی کر لو۔ شیر کے کہنے پہ دونوں نے مجبوراً ہاتھ ملایا اور لومڑی نے سارس کو کھانے پہ بلایا۔ سارس جب بنٹھن کے آیا تو لومڑی نے پتلے شوربے سے بھری پلیٹ سارس کے آگے رکھ دی۔ اب سارس کی چونچ اتنی لمبی تھی کہ پلیٹ میں رکھا شوربہ پینا بہت مشکل تھا۔ بی لومڑی نے کہا، ارے بھائی سارس، آپ تو بہت تکلف کر رہے ہیں، یہ دیکھیے ایسے پیا جاتا ہے۔ اور بی لومڑی نے زبان نکالی اور لپ لپ کر کے سارا شوربہ سڑک لیا۔ اگلے دن سارس نے بی لومڑی کو کھانے پہ بلایا اور سامنے ایک سراہی رکھ دی جس کے اندر بوٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بھلا بی لومڑی کی تھوتنی سراہی میں کیسے جاتی؟ غصہ تو بہت آیا مگر پی گئیں۔ سارس نے کہا، لومڑی آپا، آپ تو بہت ہی تکلف کر رہی ہیں، یہ دیکھیے سراہی میں سے بوٹیاں اس طرح کھاتے ہیں۔ سارس نے اپنی پتلی چونچ سراہی میں ڈالی اور ساری بوٹیاں سٹک لیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اٹاری میں تو بھارت کو غصہ آ گیا، اب 2 اپریل کو واگھا میں پاکستان بھارتی ششٹ منڈل کو کرتارپور کی تھالی میں شوربہ پلائے گا یا سراہی میں بوٹیاں پروسے گا؟
وسعت اللہ خان کی ڈائری آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سندھ واسنی سے۔
دیش کے بندوق رکھنے سمبندھی قانونوں کی سمیکشا کے لیے نیوزی لینڈ کیبنیٹ کی بیٹھک تھوڑی دیر پہلے شروع ہوئی۔ پردھان منتری جیسنڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ وہ قانونوں کو اور کڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ گوا کے مکھیہ منتری اور بھارت کے پورو رکشا منتری منوہر پریکر کا رویوار شام کو ندھن ہو گیا۔ وہ 63 سال کے تھے۔ پریکر پچھلے 1 سال سے اگناشے کے کینسر سے جوجھ رہے تھے۔ امریکی سینیٹر کرسٹین جلیبرانڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ راشٹرپتی پد کے لیے چناؤ لڑیں گی۔ نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ حملے میں اپنی پتنی حسنی آرا کو کھونے والے فرید الدین نے بی بی سی سے کہا ہے کہ انہوں نے ہتیارے کو معاف کر دیا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दाज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।